Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
ये बताने में श्रुति का तात्पर्य वह नहीं है. तो कहा कि आप ये कहना चाहते हैं, शंकर भाव बोले कि यहाँ आप यह कहना चाहते हैं कि यहाँ श्रुति नहीं बताना चाहती कि इतना बड़ा कि इतना छोटा, इससे उनका तात्पर्य नहीं है, परिमाण बताने में उनकी विवक्षा नहीं है, पर आत्म चैतन्य को लखाने में उसकी विद्यमानता वह वहाँ मौजूद है, उपस्थित है, वह चेतन है. इसको ये आपके लिए बहुत बड़ा एक आश्वासन है. परमात्मा है, आपके हृदय में है. इसमें श्रुति में आया था अस्तित्व उपलब्धव्यः, जो अस्ति है परमात्मा, यह विश्वास मानता है उसे परमात्मा मिलेगा. जो कहता है नहीं है उसे कहाँ से मिलेगा. तो कहा कि वो परमात्मा है, उसकी विद्यमानता है, ये बताने में श्रुति का तात्पर्य है. भाई आपने ये बात मान ली कि नाप तौल से तात्पर्य नहीं है, और नाप जोख जो है वो तो हृदय का है, या हृदय की बात कही जा रही है तो उसका है, और आत्मा उससे परे है. आपने ये बात मानी. तो हम जब कहते हैं कि ये आत्मा ब्रह्म है तो वो बात सिद्ध हो रही है कि नहीं, क्योंकि अणु वहां सिद्ध नहीं हो रहा. तो नाप से परे है ये हम दोनों मान रहे हैं, लेकिन आप उसको विशेषण से युक्त आत्मा को मानते हैं तो उसको छोटा बड़ा मानते हैं, और हम उसको विशेषण से युक्त नहीं मानते. लेकिन एक जगह हम दोनों खड़े हैं कि नाप जो तौल से तात्पर्य श्रुति का नहीं. देखो वेदांत दोनों मानते हैं और श्रुति को प्रमाण, उपनिषद को प्रमाण, दोनों मानते हैं. ये आचार्यों की विशेषता होती कि उपनिषद प्रमाण को लेकर, प्रस्थान त्रयी को लेकर अपने अपने मत का विवेचन करते हैं. तो हम दोनों मान रहे हैं, पर अणु है या ब्रह्म है इस पे बात बन नहीं रही है. तो आप देखिए, हम आपको श्रुति के उत्तरार्ध में ले चलते हैं. हे रामानुज भाव, हम आपको श्रुति के उत्तरार्ध में जो दूसरी पंक्ति है उसमें हम ले चलते हैं. तो क्या है, कहा ईशानो भूत भव्यस्य, तो अंगुष्ट मात्र पुरुष अर्थात जो भूत भव्य का ईशान करने वाला है वह कितना बड़ा, तो उसका उस पर ले चलते हैं. तो आप हमें ये बताइए कि वह अणु है या ब्रह्म. अब यहाँ पर क्या किया, भाष्यकार भगवान ने महावाक्य लिया है, तो उसी प्रकार से वहाँ जो शंकर भाव है, तो शंकर भाव ने कहा कि जो अंगुष्ट मात्र है वही भूत भविष्य का ईशान है, वही इतना बड़ा है. तो अंगुष्ट मात्रता नहीं है, ईशानता नहीं है, दोनों का ऐक्य दिखाया जा रहा है, क्योंकि समानाधिकरण है, एक ही विभक्ति का प्रयोग है दोनों के लिए. अंगुष्ट मात्र पुरुषः ईशानः भूत भव्यस्य, ईशानः ले लो, भूत भव्य छोड़ दो, तो अंगुष्ट मात्र पुरुषः ईशानः. तो इसके द्वारा सामान्याधिकरण, सामान्य अधिकरण की समानता वह दिखाई जा रही, अर्थात एक ही विभक्ति में ये दोनों पद हैं. जैसे कि किसी साधु को हम देखकर कहें कि ये जो सन्यासी के वेश में बैठा है, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जिसने बड़ी माला पहन रखी है, वह मुसलमान है. ये हिंदू साधु का वेश का वर्णन करके और कहें कि ये हिंदू साधु जो बना बैठा है यह मुसलमान है. बहुत से मुसलमान भक्त भी हुए, तो कहा कि यह मुसलमान है. तो वहाँ उसके रूप का वर्णन करने में, उपाधि का वर्णन करने में तात्पर्य नहीं है, वह विवक्षा यह है कि वह मुसलमान है, ये बताने में तात्पर्य है, ठीक है ना. तो उसी प्रकार से यहाँ ये बता रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है वह ईशान है, वह ईशान है। जो आपके हृदय में छोटा सा चैतन्य है वह ईशान है। अंगुष्ठ मात्र उपाधि बताने में वह तात्पर्य नहीं है। तो अज्ञ दशा में, अविवेक दशा में जो जीव है, वही जब विवेक की दशा, जब आप अविवेक को छोड़ देते हैं अविवेक दशा में, तो जीव है, लेकिन वह क्या है? परमात्मा है। जब तक जानते नहीं है तब तक वह हिंदू ही है, पहले भी हिंदू है, बाद में भी हिंदू है। जब जानते हैं तो हाँ, पहले वो मुसलमान था, अब आपका हिंदू साधु है। बहुत से महात्मा विदेशी बहुत हैं, तो उनको बोलते हैं ये फ्रेंच है, हम लोग बोलते हैं ये जापानी है, हैं बहुत हैं भारतवर्ष में विदेशी साधु। और एक विदेशी साधु की कथा, एक बहुत बड़ी साधु है हमारे उत्तराखंड में, नानी माँ, उन्होंने लिखी है, इतनी करुण लिखी है कि उसको अपने गुरु के प्रति प्रेम, संस्कृति के प्रति प्रेम, गंगा के प्रति अद्भुत प्रेम, लेकिन यहाँ का उसको वीजा नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार के पास कोई नापतौल नहीं है ना कि वो हृदय को देख सके। और वो कैसे कैसे कष्ट उठाता है, और आखिरी में बहुत कष्ट उठाकर जब आखिरी यहाँ आता है अंतिम बार, तो गुरु के चरणों में शरीर छोड़ देता है। अमेरिकन है, ऐसी कथा पुस्तक उन्होंने सत्य की लिखी है। तो क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं कि ये फ्रेंच है, ये जर्मन है, तो पूर्व की बात, यहाँ दृष्टांत थोड़ा उल्टा है, तो उसको लेकर बोलते हैं। तो वाक्य जो होता है, श्रुति वाक्य, वह अज्ञात का ज्ञापक होता है। छोटा सा हमारा हृदय है, अंगुष्ठ मात्र, और उसी को महाराज पुराणों में बताया गया कि उसको खींच के यम के दूत ले जाते हैं, अंगुष्ठ मात्र जीव को, तो उस अंगुष्ठ मात्र जीव को खींच के ले जाते हैं, स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, वैकुंठ जाता है, गमनागमन करता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कुछ नहीं करता, वो तो ईशान है। तो वाक्य अज्ञात का ज्ञापक होता है, तो ईशान कौन? तो कहा भयाद अस्याग्निस्तपति, भयाद तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर धावति पंचमा, सबके ऊपर जो शासन करने वाला है वह है। तो तब उसको विजुगुप्सा नहीं है, डर नहीं होता है। इतद वैतद अंगुष्ठ मात्र से उपलक्षित जो परमार्थ तत्व है, परमार्थ सत्य है, वह जो परमार्थ सत्य है, जो विदित अविदित से परे, जिसके प्रश्न पूछे थे वो प्रश्नों को दोहरा दिया करते हैं, जो कृत और अकृत से परे है, धर्म अधर्म से परे है, वो जो विष्णु का परम पद है, वह तत्व, वह यही है। देवता भी जिसके, देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, देवता भी जिसके लिए ढूंढते रहते हैं। तो आगे कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिवा धूमका। अब वहाँ क्या है, बात वही की वही है, वही मंत्र यहाँ भी है, लेकिन ज्योति अधूम कहा। तो जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, तो परिच्छिन्न मय की ओट में परमात्मा छुपा हुआ है, उसको ढूंढ लो। तो परिच्छिन्न मय को देखते हो तो तब तक परमात्मा को नहीं देख पाते हो। और आपको ये ज्ञान नहीं है कि जब आप कुछ भी परिच्छिन्न देखते हैं, देश देखते हैं, काल देखते हैं, वस्तु देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, तो पहले परमात्मा से एक होकर तब देखते हैं, परमात्मा के कारण ही देखते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि मैं परिच्छिन्न हूं, आप केवल विशुद्ध प्रकाश को, ज्ञान को देखें, उस विशुद्ध प्रकाश को, ज्ञान को जब आप देखते हैं तो आप परमात्मा को नहीं देख पाते। लेकिन जब केवल उस विशुद्ध को देखते हैं तो ये सब छूट जाता है। तो देख, दृष्टि का भेद है, आप परमात्मा को देखें अथवा आप उपाधि को देखें। और जब आप, उपाधि क्या है? मान्यता है, व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, जो आती है और जाती है। कोई उपाधि हमें हमेशा लगी ही नहीं रहती, हमारे साथ छूटती जाती है। तो जब आप इसको ज्योतिरिवा धूम का, अधूमक जो है, अर्थात जिसमें कोई उपाधि नहीं है, तो काल उसको मार नहीं सकता है, देश उसको घेर नहीं सकता है और वस्तुएं उसके साथ दुश्मनी नहीं कर सकती हैं। जहां भी दूसरा खड़ा होगा दुश्मनी होगी, समझ लेना, वह प्रतियोगी होता है। बोलते हैं ना अन्योन्य भाव, बोलते हैं चार अभाव लगे अभी उनको छोड़ दीजिए, पर वो प्रतियोगी ही होता है। जहां घट है वहां पट नहीं है, जहां पट है वहां घट नहीं है, जहां आप है वहां दूसरा नहीं है, जहां दूसरा, ऐसे करके वह प्रतियोगी, वह दुश्मनी करता है और उससे भय ही होता है। अपने आप एक कमरे में आप स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन जब दूसरा होता है तो आपकी दृष्टि मना रहता है, दूसरा है दूसरा है, तो उसके सामने कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। न तो विजुगुप्सते, तो भय नहीं रहता, तो काल उसको पीसता नहीं है। जब आप अपने ईशान स्वरूप को समझ लेते हैं और देश उसको छोटा नहीं बनाता और जड़ता, जो वस्तुओं की जड़ता है वह उसके ऊपर हावी नहीं होती है, ऐसा वह चैतन्य, चैतन्य से जड़ बन गया महाराज और ये सब परिच्छिन्नताओं ने उसको घेर लिया। तो अज्ञानी दृष्टि है कि प्रपंच सत्य है और विवेकी की दृष्टि है कि प्रपंच असत्य है। थोड़ा विवेक जाग जाता है, हाँ बात तो सही है, जो हम कॉलेज के जमाने में किए थे वो तो सब छूट गया, चला गया, कहाँ गया, स्वप्नवत हो गया। तो स्वप्न को आप सच्चा नहीं मानते, जागने पर कोई कहे कि वो स्वप्न तुम्हारा सच्चा था तो आप कहेंगे नहीं वो झूठा था। तो जैसे आप स्वप्नों को असत्य मानते हैं वैसे पीछे जो सब बीत गया स्वप्नवत हो गया, वो छूट गया, वह स्वप्नवत हो गया है। तो इसलिए विवेकी की एक दृष्टि होती है, विवेक करने लगता है, नास्ति अकृता कृतेन, कितना भी हम करेंगे वो सब छूट जाएगा, पीछे भूत के काल में चला जाएगा, कौन किसको याद रखता है। महाराज एक किसी से किसी ने कहा कि हमें लगता है ऐसे कि तुम पूर्व जन्म में महात्मा गांधी थे। एक व्यक्ति ने कहा कि हमें ऐसे लगता है कि तुम पूर्व जन्म में महात्मा गांधी थे। अब यदि वो बेवकूफ है तो कहेगा हाँ हम पूर्व जन्म में महात्मा गांधी थे, और यदि समझदार होगा तो सोचेगा कि पूर्व जन्म में हम महात्मा गांधी थे लेकिन आज इस जन्म में तो हमें याद भी नहीं है कि हम महात्मा गांधी थे, इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण भी नहीं है। तो मान लो हम महात्मा गांधी बन जाएं, इंदिरा गांधी बन जाएं, जो भी बन जाए, लेकिन उससे हमें क्या उपलब्धि हुई, हमें क्या वस्तु सत्य की उपलब्धि हुई। पूरे राष्ट्र ने पूजा, पूरे राष्ट्र ने सम्मान दिया, ये सम्मान आदि भी बहुत थोथे होते हैं, खोखले होते हैं, इनके पीछे विवेकी नहीं दौड़ता है, विचारशील नहीं दौड़ता है, वह वस्तु सत्य चाहता है। तो हम महात्मा गांधी थे या जो भी थे, इंदिरा गांधी थे, लेकिन उससे क्या प्राप्त हुआ। तो महात्मा गांधी एक नाम है, इंदिरा गांधी एक नाम है, कहीं इतिहास के एक कोने में बहुत बड़ा विशाल इतिहास, महाराज आप ऐसे नहीं समझना, बहुत बड़ा विशाल इतिहास है, उसके कहीं एक कोने में एक लाइन में वह नाम लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, शंकराचार्य भगवान, कृष्ण भगवान हमारे साथ साथ हैं, क्योंकि वो विचार के रूप में जो उन्होंने सत्य का विचार दिया है, वह ज्ञान वह जीवित रहता है, वह सत्य ज्ञान ही जीवित रहता है और वही आपका स्वरूप है ना, आप ही वह हैं। तो इसलिए आपका वह स्वरूप है, आप हैं वह, लेकिन आप जब विवेक नहीं करते हैं तो आप इस जगत में दृश्य प्रपंच में फंसते हैं। तो विवेकी दृष्टि से यह असत्य है और गुरु शिष्य की दृष्टि से अनिर्वचनीय है, क्योंकि जब गुरु शिष्य को देखते हैं तो उसको व्यवहार को लेकर समझाते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं विचार करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए इत्यादि। तो इसलिए वह एक दृष्टि से है, एक दृष्टि से नहीं है, और स्वयं की दृष्टि से, क्योंकि गुरु जब बनेगा तो दो कौड़ी का चेला होगा और दो कौड़ी का गुरु, माने उपाधि, दो कौड़ी माने उपाधि, तो दो कौड़ी का एक चेला होगा और कल हमसे किसी ने पूछा ये आपके शिष्य है, हमने कहा सोचना पड़ेगा ये कोई आपके शिष्य है तो हमने कहा सोचना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बना रहा है शिष्य को या शिष्य बना रहा है गुरु को, अनिर्वचनीय माया है, वह अनिर्वचनीय माया है। तो कहा कि ये जब तक ये दृष्टि की प्राप्ति नहीं होती है तो गुरु सोचेगा हमारा चेला, बहुत हमने देखा महात्माओं ने, गुरु सोचते हैं कि हमारा चेला कोई दूसरा ना ले जाए, गुरु जी सोचते हैं कि हमारा चेला है कोई दूसरा इसको चेला बनाकर ना ले जाए, है ना, तो भय लगा रहता है और चेले को भय लगा रहता है कि पता नहीं गुरु जी हमें ज्ञान देंगे कि नहीं। और ज्ञान की बात तो बहुत दूर की कथा हो गई महाराज, वो तो आप लोग समझ रहे हैं, आपको धन्यवाद है। वहां तो चेले को लगा रहता है कि गुरु जी हमें गद्दी देंगे कि नहीं, गुरु जी हमें आश्रम देंगे कि नहीं, जिससे खुश हो जाएंगे उसको आश्रम दे देंगे, ज्ञान है तब तो देना तो ऐसा गुरु जी दो कौड़ी के चेले जी दो कौड़ी, तो ज्ञान है तब तो ज्ञान दे। महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न उत्तर है आखिरी दिनों के कुछ महीनों वर्षों के, तो महाराज जी ने कहा कि देखो ज्ञान की कोई गद्दी नहीं होती है, जो योग्य होता है वह ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, और इसलिए वो ज्ञान किसको प्राप्त हुआ है वो उससे देखो कि कौन उत्तराधिकारी है। नहीं कहा वो वहां उस आश्रम में बैठे उस गद्दी में बैठे, तो थोड़ा सा तो कहा कि गुरु शिष्य का जो है उसमें भी एक भय बना रहता है क्योंकि द्वैत है ना। इसलिए उस दिन आपको सुनाया था कि महाराज जी ने हमसे कहा कि ऐसा है कि गुरु शिष्य कोई संबंध नहीं है, वहां एकत्व बोध है। उपाधि को यदि ब्रह्म दृष्टि को नहीं प्राप्त है गुरु तो वह शिष्य को कैसे उस ब्रह्म दृष्टि में ले जाएगा, और ले जाएगा तब एकत्व बोध होगा, तब वो सद्गुरु है। तो ब्रह्म दृष्टि क्या है, कहा ज्ञान स्वरूप है और उसमें दो नहीं है इसलिए ठगी नहीं है, द्वैत नहीं है इसलिए ठगी नहीं है। तो स्वभाव क्या है, आपका स्वभाव जन्मने मरने का नहीं है, आपका जो स्वयं का भाव है तो जो स्वभाव नहीं है। अब कहा ज्योति रिवा धूमक है ना, तो अधूमक अर्थात उसमें बेवकूफी नहीं है, उसमें जन्म मृत्यु नहीं है, उसमें दुख आदि नहीं है, यह अधूमक अर्थात ईंधन नहीं है और ज्योति है। एक ज्योति जो आप जीवात्मा को देखते हैं, वो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक आजकल बोलते हैं कि ज्योति की तरह आत्मा निकल के गया, वो जीवात्मा है, वह परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न भावापन्न है, और वह जो जीवात्मा है तो उसमें ये सब परिच्छिन्नताएं लगी हुई हैं, वो जाता आता है। अब अधूम का ज्योति, ये अधूमक बिना धुएं की बिना ईंधन की ज्योति, आपको स्थूल भौतिक दृष्टांत भी इसका मिलेगा, ने देखा आप हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी देवी के मंदिर में जाइए तो वहां क्या अधूमक ज्योति है, वो ज्योति जलती रहती निर्मल बिना धुएं की, धूम माने धूमक माने धुआं, तो बिना धुएं की ज्योति वह निर्मल ज्योति है। तो उसको नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया, अकबर बादशाह ने बहुत बड़ा वो बनाया, क्या बोलते हैं शील्ड, क्या बोलते हैं कवच, तो कई धातुओं का छत्र वो बनाया, छत्र तो बाद में चढ़ाया, पहले बहुत वजन रखा उन ज्योतियों के ऊपर कि बुझ जाएं, जब हटाते थे तो ज्योति यूं ही जलती थी। तो चमत्कार है वहां, इस देश में बहुत चमत्कार है परमात्मा के दिए हुए, तो वो ज्योति यूं ही जलती रहती है ज्वाला देवी में। तो ज्वाला देवी में जो ज्योति है तो ये द्वैत का ईंधन जिसमें नहीं है, द्वैत का ईंधन नहीं है, वह ज्ञान ज्योति है। तो जब आप दृश्य को देखते हैं तो इसमें धुआं आ जाता है, ये धुआं आ जाता है, लेकिन यह क्या है, तो कहा ज्ञान ज्योति है। तो दृश्य का कार्य कारण भाव आदि आदि जो अनात्मा को लगे होते हैं वो उसमें नहीं है, वह उसमें नहीं है। तो धुआं क्या है, का धुआं मृत्यु है, ज्योतिरिवा धूम का 13वां मंत्र जो चल रहा है ना। तो कहा कि तो कोई भी आत्मा, यहाँ थोड़ा सा भाष्य हम लोग देखे नहीं, हम शायद नहीं देख पाएंगे। तो कहा ये जो ज्योति है, ये योग भी हृदय ईशानाभूत भव्यस्य, ये कहा कह रहे हैं भाष्यकार भगवान, नित्य कूटस्थ, यह नित्य है कूटस्थ है, अर्थात ये सदा रहती है, इसका कभी अभाव नहीं है, इस आत्म चैतन्य का अभाव नहीं है। तो अपने आत्मा का अभाव देखने में कोई समर्थ नहीं है, ऐसे लो इसको। तो अभाव का साक्षात्कार भाष्यकार भगवान की एक पंक्ति है, नहीं कश्चित प्रतियाद नाहम अस्मिति, कोई यह अनुभव नहीं कर सकता है कि मैं नहीं हूं। तो इसलिए वो आत्मा का साक्षात्कार या नहीं हूं ऐसा करने में समर्थ नहीं है। जैसे कि बीरबल से बादशाह अकबर ने कहा कि मैं तो, मुझे जहां पनाह कहते हो, लेकिन मैं तो एक छोटे से हिंदुस्तान का बादशाह हूं, और जहां पनाह तो ईश्वर है, वो पूरी दुनिया का मालिक है। ईश्वर बादशाह के शब्दों में, अकबर के शब्दों में अभिमान था। अब बीरबल के पास युक्ति आती थी, बुद्धिमत्ता। तो बीरबल ने कहा कि जहां पनाह, आप में वह ताकत है जो ईश्वर में नहीं है। तो कहा कैसे, कि आप चाहे जिसको अपने देश से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके में ताकत नहीं है कि वो अपने देश से उसको निकाल ले। वो भगवान में, ईश्वर में वह ताकत नहीं है कि वह अपने देश से निकाल दे। इसी प्रकार से आप में वह ताकत नहीं है कि आप मैं नहीं हूं यह अनुभव करके किसी को बता दें, हमने ये देखा कि मैं नहीं हूं। तो ये यहां पर क्या है, कहा युक्ति से आत्मा अजर है, अमर है, ये आप जान सकते हैं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और अवस्थाएं आती जाती हैं और आप उनको देखते हैं। तो अजर है यहाँ कूटस्थ नित्य जो कह रहे हैं, तो कहा कि आप युक्ति से इसको जान सकते हैं, और अनुभव से मैं दृष्टा हूँ, असंग हूँ, इसको भी आप समझ सकते हैं। यदि आपके पास विवेक बुद्धि है तो आप इसको समझ सकते हैं, दो बात हो गई। लेकिन मैं अद्वितीय हूँ या बिना श्रुति प्रमाण के आप नहीं समझ सकते, ये बात है। तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों को लेकर ये जो त्रिशूल है भगवान शंकराचार्य का, उसको लेकर वो विचार करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि देखो, यहाँ पर श्रुति स्वयं ही ये बात बता रही है, जो कि बात आप युक्ति से, तर्क से और अनुभूति से समझ सकते हैं, उसको भी श्रुति यहाँ कृपा करके श्रुति वाक्य से बता रहे हैं, उसके द्वारा बताया जा रहा है। और इसलिए कहते हैं कि अनेन नायम अस्ति इति चैके इति अयम पक्षः न्यायतः अप्राप्तो अपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्तस्त तथा क्षणभंगवादश्च। तो कहा एक क्षणभंगवादी जो बौद्ध होते हैं, तो कहते हैं कि क्षण क्षण में ये सब कुछ नष्ट होता रहता है, तो इसके पीछे एक आत्म चैतन्य है, वो आत्मा का उच्छेद कर देते हैं, वैनाशिक है वो। तो कहा कि उनके शून्यवादी भी ऐसे हैं, क्योंकि श्रुति प्रमाण नहीं। तो कहा कि यद्यपि यहाँ पर वो प्राप्त ही है, लेकिन बौद्धों के क्षणवाद का भी खंडन हो रहा है, और जो नास्तिक बोलते हैं कि यह आत्मा नहीं है, उसका भी खंडन हो रहा है इसके द्वारा। ये दोनों मंत्रों से श्रुति ये बता रही है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो विराजमान है, वही ईशान भूत भव्य का ईशान है। तो दो भेद दृष्टि की जाती, उसका अपवाद श्रुति फिर से करती है, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् ताने वानु विधावती। जिस प्रकार आप पर्वत उसको कहते हैं जिसमें पर्व होते हैं, एक चोटी दूसरी चोटी, आप हिमालय में जाएंगे तो कई चोटियां मिलेंगी पर्वत की। तो पर्व माने पृथक पृथक गांठें, चोटियां। तो इनको ऊंचे स्थान से जो जल बहता है तो वो ऊंचे स्थान से, ऊंचे पर्वत से बहता है और नीचे की ओर बहता जाता है। देखेंगे अलकनंदा आदि नदियां कैसे बहती हैं, अब जब बद्रीनाथ जाते हैं और दूसरी नदियां वो कहां से दौड़ दौड़ के और उनमें समाती जाती हैं। तो कहा कि जो जैसे वो बह जाता है, पर्वतों में ही बह जाता है वह जल, उसी प्रकार से जो छोटे छोटे झरने वो यूं ही बह जाते हैं। अब वर्षा ऋतु में नासिक आदि जाते हैं तो देखते हैं बह जाते हैं, उसी प्रकार से ये जीव भी जब भिन्न आत्म तत्व को देखता है तो वो वहीं पर नष्ट हो जाता है, उन्हीं पर वहीं पर नष्ट हो जाता है। आखिरी मंत्र है तो कहा, यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगे भवति एवं मुनेर विजानता आत्मा भवति गौतमा। जैसे शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार ही गौतम, ये गौतम वंश के हैं नचिकेता, तो कहा विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। तो आत्मा का एकत्व जो कुतार्किकों की भेद दृष्टि है और नास्तिकों की कुदृष्टि है, भाष्य में है ये बात, उसका परित्याग करके और सहस्रों माता पिताओं से भी अधिक हितैषी वेद भगवान, वो वेद के उपदेश किए हुए आत्मिकत्व दर्शन की का ही अभिमान रहित होकर आदर करना चाहिए, यह बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि वेदांत की विशेषता है कि ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म, उस ज्ञान मात्र को वह दिखाता है और यही वेदांतों का चरम है, अंतिम है, और वह अखंड अखंड सत्ता, उसमें जो भी उपाधियां दिखती हैं वो है नहीं और प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न होती है वह ब्रह्म सत्ता, ये बात बता के और फिर यहाँ पर इस वल्ली की समाप्ति की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। पूज्य माता जी के चरणों में वंदन। बहुत ही सुंदर, इससे जैसे गंगोत्री की पवित्र धारा रहती है उसी तरह का यह प्रवचन हमने सुना। एक कॉमर्शियल जो इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े रहे हमारे भारत के, उसने कहा था दुनिया मेरी मुट्ठी में है, और माताजी ने बहुत ही प्यार से कहा कि अगर सत्संग में हम आते हैं तो भगवान हमारी मुट्ठी में है। तो जो उच्चता सत्संग में है, जो उच्चता स्वाध्याय में है, जो ऊंचाई अगर हम छूना चाहें तो ईश्वर की मदद के बिना तो सभी लाचार हैं। कई ऐसी घटनाएं हमारे बीच में आज हो रही है। जापान, जिसको हम आज तक यही मानते थे कि स्वावलंबी है, उनकी भाषा पर भी उनको अभिमान है और हकीकत में है, उसमें कोई दो राह नहीं, हमें अंग्रेजी बोलने का एक भूत चढ़ा हुआ है। माताजी को कुछ बातें हम साथ में बैठ के भी की, तो अपने जो राष्ट्र है उस पर गौरव होना एक बहुत बड़ी बात है। उसकी जो गतिविधियां हमने डीवीडी के द्वारा भी देखी और भी हम रोज नजारा देखते हैं, तो एक श्रोता की तरह देखते हैं। हमारे पास यह भी बदकिस्मती है कि ताली बजाने की भी हमारे पास कोई जगह ना है, ना हमें कोई गाली सुनाए तो वो सुनने वाले कोई है। यह जो कमजोरी भारत में है उससे यह अलग देश है जापान। फिर भी जो न्यूक्लियर वगैरह जो हम देखते हैं, तीसरा धड़ाका भी कल हुआ, तो जो यह एक दावानल उन्होंने अपने आसपास, क्योंकि पता है उसे कि मुझे सुनामी के बीच में मैं जी रहा हूं, भूकंप के बीच में जी रहा हूं, फिर भी अपने आसपास में वो सब पूरा केंद्र खड़ा किया है, तो कहां तक उचित है कहां तक उचित नहीं है समय आने पर दिखाया जाएगा। तो उससे थोड़ा हम उदाहरण ले कि हम भारतीय हैं, हम महाराष्ट्र के वासी हैं, गुजरात के वासी हैं, राजस्थान के वासी हैं, यूपी के वासी हैं, वो तो है, मगर सबसे पहले हम भारत के वासी हैं। और उसमें जो भी छोटी बड़ी घटनाएं कहीं भी होती है, तो यह मुझे उसका एहसास होना चाहिए। और ऐसी कुछ बातें अगर हमारे बीच में आए, क्योंकि सत्संग ही है, ईश्वर हमारी मुट्ठी में है, और वह दायित्व, वह अगर हम जो नेकी हमारे में आ जाए, तो वह कहीं सत्संग, अभी तो प्रेमपुरी ने एक ज्योति जगाई प्रेमपुरी के माध्यम से, खनान जी के महाराज के माध्यम से, और कहीं ऐसे माताजी और संत पधारते हैं, अभी तो हर जगह सत्संग फैल रहा है, तो उसका उत्तरदायित्व जो भी यहाँ के संत आए या ट्रस्टीगण हुए या श्रोतागण हुए, उनका यह उत्तरदायित्व है कि हिंदुस्तान की जो गरिमा है, जो हमारे शास्त्र की जो धरोहर है, हर इससे हम उसके साथ जुड़े, और ईश्वर करे कि ऐसा भारत हम बनाए, और प्रेमपुरी भी एक मिसाल बन के आगे आए, ऐसे हम माता जी के चरणों में वंदन करके प्रार्थना करते हैं, बड़े भाव से वंदन के साथ मल्लार्पण।